Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ओम ओम ओम। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक विशेष प्रवचन माला चल रही है। विचार के लिए 11वां श्लोक। बटुर्वागेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं मृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चेद्योगोऽसौ सच परम योगी सच सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ दिया भ्रमंतं मामंधं परम कृपया पातु मुचितं मदन्यः को दीनास तव कृपण रक्ष्याति निपुणास त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धो पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयो त्वयैव क्षन्तव्या शिवमदपराधाश्च सकला प्रयत्नात् कर्तव्यम् मदवनव्यम् बन्धुसरणि बटुर्वागेहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किम् तेन भवति यदीयम् मृत्पद्मम् यदि भवदधीनम् पशुपते त्वदीयस्त्वम् शम्भो भवसि भवभारम् च वहसि बटुर्वागेहि वा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति बच्चों को नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि वेदांत श्रवण बूढ़े होने पर ही करनी चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि वेदांत तो सन्यासियों का विषय है, उनको जिम्मा लगा दो, किसी को कहो कि वेदांत श्रवण किया करो तो बोले महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत से जिम्मेवारियां हैं, आप लोग जैसे सन्यासी तो है नहीं भाई, हमसे कहते हैं लोग। तो यहां शंकराचार्य जी कल के श्लोक में ये बताया था भगवान की भक्ति करने के लिए देह अर्थात अन्नमय शरीर स्थूल शरीर ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि शिव की पूजा शिव की भक्ति शिव की अर्चना केवल ब्राह्मण ही करे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि शिव भक्ति शरीर से नहीं हृदय से होनी है। देवता लोग ही भगवान शिव की आराधना करते थे ऐसी बात नहीं है, उसके लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, राक्षस होकर भी भगवान शिव की भक्ति की जा सकती है बशर्ते शरीर भले ही राक्षस का हो हृदय राक्षस का न हो, यह समझे। कई बार शरीर मनुष्य का होता है और हृदय राक्षस का होता है कि नहीं, उल्टा हो जाता है। संसार में ऐसे बहुत आजकल तो मुझे लगता है सारे राक्षस मर मर के अभी मनुष्य होकर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हृदय उनका राक्षस का है, दिखता है सही है, होना चाहिए था शरीर राक्षस का भले ही हो हृदय विशुद्ध शिव भक्ति से भरा हुआ होनी चाहिए था। तो कल के श्लोक में बड़ा जोर लगाया गया, पशु हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पशुओं द्वारा शिव भक्ति किए हुए भगवत भक्ति भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हैं। पक्षी होकर भी भगवान की भक्ति किए हुए हजारों उदाहरण हमने दे दिया है, कीट पतंग होकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, शरीर महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हमने कल संकेत कर दिया था, कोई कहते हैं महाराज महिलाएं स्त्री शिवलिंग का स्पर्श न करें, अब यह सर्वथा मूर्खता की बात है, पृथ्वी शिवलिंग है तो आप क्या करोगे, स्पर्श नहीं करोगे तो कहां जाओगे, पृथ्वी पूरी पृथ्वी शिवलिंग है, क्या करोगे बोलो, तो स्पर्श न करें स्त्री तो कहां खड़े हो जाएं, कहां खड़े हो, आकाश स्वयं शिवलिंग है, क्या कर लोगे बोलो, क्या इस शिव स्पर्श नहीं होगा? तुमर कस्तुम सोम तुमसी पवनस्तुम उतवह।
लियो जी,
ये हवा है, पवन है, वो पूरा शिवलिंग है। आप लोग तिरुपति बालाजी तो बहुत गए होंगे, लेकिन श्रीकाल हस्तीश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया होगा, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि तिरुपति बालाजी वह आजकल के हिसाब से वो सभी को पैसा बांटने वाले देवता हैं, खूब धान संपत्ति देने वाले देवता हैं। अब श्रीकाल हस्तेश्वर महादेव तो बेचारे पकड़ हैं, है? इसलिए आप लोग नहीं जाते हो। तिरुपति बालाजी से 40 किलोमीटर चेन्नई की तरफ, मद्रास की सिटी, राजधानी की तरफ 40 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है श्रीकालहस्तीश्वर महादेव। वहां श्रीकालहस्तीश्वर महादेव की जो मंदिर है, वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वो मंदिर वायुलिंग है, वायुलिंग। हाँ, मंदिर भव्य है, बहुत विशाल मंदिर है। साउथ के मंदिर तो आप लोग जानते ही हो, देखा ही है, हर मंदिर बड़े बड़े विशाल होते हैं, और मंदिर से भी गोपुर और भयंकर होते हैं। लेकिन वो विशाल मंदिर के अंदर जो गर्भगृह जहां शिव विग्रह रखा जाता है, वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वहां हवा ही वहां शिवलिंग है, उसको वायुलिंग कहते हैं। अंदर एक बत्ती ज्योत जला रखी है, वो ज्योत हवा से जो हिलती है ना, वही हिलना, बत्ती का हिलना ही हवा है, वहां वायु है, हमेशा जलती रहती है, तो वायु लिंग के रूप में। तो पुराण में बताया, शिव महिमा स्तोत्र में बताया, तुम पवन असी, ये हवा ही शिव है। तब महिला शिवलिंग स्पर्श न करे, तब ये वायुलिंग का स्पर्श किए बिना कैसे बचोगे तुम लोग, बोलो है? अब आकाश लिंग है, अब आकाश का स्पर्श किए बिना तुम्हारा अस्तित्व कहां रहेगा? देखो, शरीर से स्पर्श हो न हो, ये बात महत्व की चीज नहीं है। तुम्हारे भावना से स्पर्श है कि नहीं? कीटत्व का उदाहरण आया श्रीकाल हस्तेश्वर के, मुझे ख्याल आ गया, वहां उसके इतिहास है। एक मकड़ी, मकड़ी होता है ना, जाला बनाकर रहता है, गुजराती में क्या करोड़ियों बोलते हैं, करोड़पति हो कि करोड़ियों पता नहीं, क्योंकि करोड़पति के भवन में भी रहता है ना वो, अरबियों कह दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अरबपति के यहां भी रहता है वो। तो उसके इतिहास है, कहते हैं एक मकड़ी भगवान शिव को दिन में, कहते पहले मंदिर नहीं था, कहते जंगल था, तो दिन के समय में वो मकड़ी सुबह सुबह आए और पूरा ऊपर शिवलिंग के ऊपर जाला बनावे। तो किसी ने पूछा कि क्या करता है, बोले भगवान दिन भर धूप में पड़े रहते हैं, कोई छतरी लगाने वाला नहीं आता है, हमको 2 मिनट 10 मिनट धूप में खड़े होना पड़ता है, तो कितना कष्ट होता है बेचारे, उनको कोई छतरी नहीं, कोई छाया नहीं, इसलिए भगवान को छाया बनाने के लिए छतरी लगा रहा हूं। इसलिए उसका नाम श्रीकाल हस्ती, एक हाथी फिर नदी में जाता था, सूंड में पानी भर के लाता था और भगवान शिव को चढ़ाता था। फिर वह सूंड से जैसे पानी चढ़ाए तो वह बेचारा मकड़ी का बनाया हुआ छत्री सब टूटे, फिर मकड़ी दोबारे छत्री बनाने लग जाए। भक्ति करने के लिए शरीर मनुष्य का चाहिए ये मतलब नहीं है। मकड़ी के शरीर में भी उसका जो हृदय है वो तो वही है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं हृदय के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में हमेशा ये कह रहा हूं। तुम लोग सत्संगियों को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पुनर्जन्म हुआ तो केवल स्थूल शरीर ही बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं। समझे कि नहीं? मान लो यहां जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान मुझे दूसरे जन्म में कौन से योनि की प्राप्ति होगी, ये वो महत्व की चीज नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन हृदय भगवान की भक्ति में चरण में लगा रहे, क्योंकि अभी हम मनुष्य हैं तो इस समय हमारा हृदय है, हमारे पास हृदय है। मान लो कि किसी काम किसी कर्म और अविद्या, अविद्या काम कर्म पुनर्जन्म का हेतु है, वेदांत बार बार यही कह रहा है। अविद्या माने स्वरूप का अज्ञान, काम माने वासना जन्म जन्मांतर की वासनाएं, कर्म माने सुबह सुबह कर्म, ये तीन के आधार में पुनर्जन्म होता ही रहता है, होता ही रहता है। और जब तक ये तीन वस्तु का बाध नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकता, तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकेगा। तब मान लो कि अभी हम मनुष्य हैं, मनुष्य के योनि में रहते हुए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है किसी कर्म वासना के चलते दूसरे जन्म में हमको मकोड़े का जन्म लेना पड़ेगा, तो सूक्ष्म शरीर वही होगा जो अभी है, यही होगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा नहीं है? और संस्कार भी यही होंगे जो इस शरीर में इस समय सूक्ष्म शरीर में हैं। तो भगवान इतने ही कहते हैं कि वो अभी जिस तरह की आपके चरण कमल में मेरी भक्ति है, ये भक्ति किसी भी शरीर में मैं जाऊं ये भक्ति यथावत बनी रहे, ऐसा नहीं कि जन्मांतर में वो विस्मृत हो जाए, वो बाधित हो जाए है? तो ये देह के प्रति महत्व न देते हुए हृदय के प्रति महत्व देकर ये श्लोक में शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मुझे पुनर्जन्म से भी मुझे कोई दुख नहीं है। पुनर्जन्म होता है, हो जाओ, और पुनर्जन्म भी मनुष्य के प्रति राग भी नहीं है, पशु पक्षियों के से द्वेष भी नहीं है। शरीर जिस किसी का भी मिले, आपसे इतनी प्रार्थना है कि ये हृदय सतत आपके चरण की भक्ति करता रहे। अब यहां बोल रहे हैं वेद का पूरा आधार ही वर्णाश्रम है, और आज उस वर्णाश्रम को तोड़ दिया गया, क्योंकि वैदिक सिद्धांत ही आज सभी ने तोड़ दिया। किसी को सब लोग कहते हैं तुम किस धर्म को मानते हो, किस शास्त्र को मानते हो, तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, सब कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं, सब कहते हैं हम वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वेद को मानते हैं, वेद का कहा कोई नहीं करता है। वेद को मान रहे हैं, वेद का कहा कोई नहीं मानता। वो ठीक इसी तरह कोई बच्चा बाप को मानता है, बाप का कहा नहीं मानता। कोई बच्चा मां को मानता है, मेरी मां है मानता है, तू मानता है ये तेरी मां है, बोले हां मेरी मां है मानता हूं, जानता भी है, बोले हां मेरी मां है मैं जानता हूं, क्या मां का कहा मानता है? वो तो जरूरी नहीं है महाराज। मां को मानना जरूरी है, बाप को मानना जरूरी है, बाप का कहा मानना जरूरी नहीं है। ऐसे स्वतंत्रता ह्यूमन राइट्स आ गया आजकल, है क्या मानव अधिकार आ गया है? बाप को मानना है, लेकिन बाप के मानना स्वतंत्रता होना चाहिए, बस कोई अनुशासन न करे। देख लो, वेद को मानो, लेकिन वेद का कहना मानने की जरूरत नहीं है। तो यहां कहते हैं कि महाराज, वेद ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की है। वर्णाश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, चार वर्ण चार आश्रम। ये वेदानुशासन है। वेदानुशासन वेद ने व्यवस्था इस तरह मिलाई है मनुष्यों को। तो शंकराचार्य कहते हैं, वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो, वटु यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कोई भी मनुष्य जब तक जीवन को चार भाग में बांटा है, वैदिक सनातन धर्म ने जीवन को चार भाग में बांटा, चार एक जीवन को चार भाग में जो बांटा है, उस चार भाग का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। व्यक्ति यदि ये चारों आश्रमों को वैदिक विधि से दीक्षा पूर्वक आचरण करता है, अनुष्ठान करता है, तब जाकर वह वेदानुशासन को पूरा करता है। तो सामान्य आधार माना है 100 वर्ष की आयु। जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रभ्रवाम शरदा शतम, अधीन श्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शता। 100 शरद, 100 शरद माने शरद ऋतु, 100 शरद ऋतु, यही 100 वर्ष। तो 25 वर्ष का जो आधार है जीवन का, वो प्राइमरी पीरियड है। और वेद के अनुशासन है कि 25 वर्ष तक तुम वाह एक से एक है भाई, हाँ एक से एक है, हाँ? हाँ। तो 25 वर्ष तक वेद का अनुशासन कि केवल तुमको और किसी चीज की चिंता ही मत करो, केवल वेद अध्ययन करो। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म का दो अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि वेद के कहे अनुसार समग्र आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य है। वेदानुगामी, वेदानुशासन को आचरण में लेना ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, वेद अध्ययन के अलावा और दूसरा कोई चिंतन न करो, या परमात्मा के अलावा और कोई चिंतन न करो है? और उसके बाद जब तुम्हारा आधार मजबूत होगा, स्वाभाविक ही है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो उतने नीचे उसको बेस देना पड़ता है, उसका फाउंडेशन उतने ही गहरा उतने ही मजबूत बनाना पड़ेगा। और क्योंकि जीवन का जो बेस है प्रारंभिक, वो यदि परिपुष्ट, परिपक्व, परिमार्जित और शुद्ध होगा, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में खड़ा हुआ हुआ बाकी गृहस्थ आश्रम वो भी परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, वो शुद्ध होगा, उसमें विकार नहीं आएगा, तब फिर वानप्रस्थ और सन्यास इस तरह चलता रहेगा। बटुर्वाग्ये ही वा, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जीवन का एक प्राथमिक क्षण चाहे बटु का क्षण हो यानी ब्रह्मचर्य अवस्था हो, जीवन का द्वितीय जो चरण है गृहस्थी ये ही, चाहे वो गृहस्थाश्रम का हो, यतिरपि जटि, यहां थोड़ा व्यतिक्रम कर लेना, जटि को तीसरे क्रम में ले आना, यति को चौथे क्रम ले जाना। तो जटि अर्थात वानप्रस्थ आश्रम और यति अर्थात तुरीय आश्रम, चतुर्थ आश्रम। संस्कृत भाषा में चतुर्थ ये शब्द को तुरीय कहते हैं। हा बटुर्वा गेही वा, देखो जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं प्राय करके बटु ही ज्यादा भगवान के भक्त दिख रहे हैं। इतिहास पढ़ लो, है ना, प्रहलाद गिरस्त होने के बाद भक्ति किया कि सन्यास लेने के बाद भक्ति किया भगवान की, या वानप्रस्थी होकर भक्ति किया, ना गिरस्त होकर ना सन्यासी ना वानप्रस्थ। प्रहलाद की बात देख लो, बटु ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवत भक्ति कर रहे हैं। ध्रुव की बात देख लो, सन्यास लेकर भगवान की भक्ति की या वानप्रस्थी होकर किया, बटुर। इसी तरह उपमन्यु को देख लो, क्या सन्यासी होकर भगवान की भक्ति की उन्होंने, बटुर। प्रथम क्षण में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवान की भक्ति की, ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। उद्धव को भी भगवान का भक्त ही मानते हैं, है ना, सख्य भक्त के अंतर्गत उद्धव का पहले नाम आता है, तो भक्तों में उद्धव सख्य भक्ति करने वाले हैं प्रधान। तब वो भी कोई गृहस्थ होकर नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य में ही कर रहे हैं। अनेक उदाहरण, नचिकेता देख लो कितने उदाहरण है, हैं? नारद जी देख लो, अनेक उदाहरण है। आज के नारद को कहते हैं कि तुम भी भक्ति कर लो, तो बोले अभी तो उम्र बाकी है महाराज, बुढ़ौती में करेंगे, कर लिया बुढ़ौती में।